पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय नमो। भक्त्या विना पराधनस्यै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्नमस्ते चरणं प्रपद्यन्तमनुपेतमपि पायनो विरह कातरया जिह्वा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेतु तं सर्वभूतहृदयम्। श्यामलिं सदाभिजगतो मन्दीकृतेन्दीवर जगुरुजङ्कितगतं पट्टम्बरस्य प्रिय वृन्दारण्यनिवासिनं भजिलशब्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितजलभृदाम। दिखला रही है मैं आप ये दिखला रही है तो ब्रह्म जिज्ञासा ये प्रश्न क्यों हुआ इसलिए शास्त्रों में वेदों में उपनिषदों में विशेषकर ये बतलाया गया नेह नानास्ति किंचन। वस्तु जो परतत्व है अलग अलग नहीं, अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म। विशेषकर के चारों वेदों से चार प्रकार के ये कुछ तत्व मिलते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, सत्यम, ज्ञानम, अनंतम, एकम एव अद्वितीय, तत्वम ऐसे मिलते हैं। और ठीक इसके विपरीत उन्हीं वेदों में उन्हीं प्रकरणों में गौ सपर्णा सैजा सखाई ये भी मिलता है। और एक ऐसा ही और श्लोक है यही एक ऐसा ही गौ सपर्णा सैजा है ना ऐसे श्लोक ही एक ऐसा ही और है जिसमें एक फल का साधन करता है एक साक्षी है और एक ऐसा श्लोक और है। दो श्लोक ऐसे हैं और समान पुरुषो परिशस्व जाति तो यहाँ पर देखा जाता है कि दो आत्मा है ऐसा देखा जाता है। और नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एक ब्रह्म है और साथ साथ में बहुत से हजारों लाखों अगणित चेतन है। आत्माएं अनंत है और उनमें एक है परमात्मा है, एक साक्षी है और दूसरा नियंता है। साक्षी नियंता दृष्टा वो है और दूसरा भोक्ता है कर्म फल भोग करने वाला। तो ये दोनों को देखते हैं ब्रह्म के लिए यह भी बतलाया गया है जतो वो माय निपुतानि, इसके द्वारा जितने भी प्राणी और ये विश्व है ये सब ब्रह्म से होता है। तो उसमें चेतनस चेतना नाम है, तो चेतना नाम के लिए ये जगत सृष्टि इत्यादि है कि नहीं है। जो मुख्य साक्षी है उसके लिए है या इसके लिए है? कहीं कहीं पर प्रकृति के लिए भी कहा गया है कि जगत किसे निकला है। अतएव परस्पर विरोधी तरह तरह के विषयों का सामंजस्य कैसे होगा? वेद दो प्रकार की बातें नहीं कर सकते, उनका विचार एक ही होगा। तो ये नाना प्रकार की बातें, परस्पर विरोधी बातें जो दिखती हैं, ये क्यों? इसलिए उन्होंने कहा जर्था तो इसे ब्रह्म की जिज्ञासा। इसको जितना हमने कहा उसी को लेकर के इसमें समन्वय करना होगा। अब सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, एक तो ये, और फिर बतलाया इसके ठीक विपरीत श्रीमद् भागवत में स्वयं उन्होंने उसकी जो व्याख्या की वो इसका उसका श्रीमद् भागवत उसका सूत्र की व्याख्या स्वयं व्यास देव के द्वारा। इसलिए जितने तरह के विचार हैं उन सबका सामंजस्य श्रीमद् भागवत में लेकर के करना, उनको लेकर तब तक वो ठीक होगा व्यास का विचार होगा। अब इसमें देखो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि प्रज्ञानम ब्रह्म, एक अद्वितीय के लिए कहा। दूसरी तरफ में वो जो दौसपर्ण इत्यादि सुखा इत्यादि जो बतलाया इसी के लिए ये कहते हैं दो चीज नहीं है, एक ही चीज है। एक ही वस्तु है, दो वस्तु नहीं। इस चीज को बतलाने के लिए इस सूत्र की अवतारणा करके बतला रहे हैं जिससे जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय इत्यादि को, और इसको तैतरीय उपनिषद से या उपनिषद से लेकर के पूछते। शंकराचार्य ने इसमें व्यास जी के सूत्रों का अर्थ समझ रहे हैं किंतु उसको गोपन करने के लिए और द्वैत वाद का की स्थापना करने के लिए उन्होंने बतलाया कि वेद के जो दो विचार जो परस्पर विचार विरोधी रखते हैं उनमें एक को मुख्य और एक को गौण मानो, दोनों सत्य नहीं हो सकते, इसलिए एक ही सत्य होगा। यदि वो कहते हैं कि सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म तो यही सत्य होना चाहिए, तो दूसरा क्या है? दौ सपर्णा शाखायो इत्यादि कहते हैं कि वो गौण अर्थ है। इसलिए ब्रह्म दो प्रकार के हैं, एक शुद्ध ब्रह्म और दूसरे हैं माया द्वारा आच्छादित ब्रह्म। एक को कहते हैं व्यवहारिक ब्रह्म और दूसरे कहते हैं परमार्थिक ब्रह्म। व्यास जी ने ऐसा कहीं भी किसी जगह वेदों में उपनिषदों में भागवतों में उपनिषदों में कहीं भी ऐसा नहीं दिखला, कहीं नहीं दिखला। इसलिए ब्रह्म का जो लक्षण उन्होंने दिखलाया था तो ब्रह्म जिज्ञासा कहां कर गए, तो उसका वो मुख्य अर्थ दिखलाएंगे ना गौण अर्थ दिखलाएंगे? जब प्रश्न ही कर रहे हैं जब था तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा होनी चाहिए तो वहां पर गौण अर्थ क्यों देंगे? गौण जो व्याख्या है यदि कोई होगी क्यों देंगे? इसलिए समस्त उपनिषदों का वेदों का जो तात्पर्य है वो यहां पर दे रहे हैं जिसके द्वारा इस जगत की और जगत के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और लय है, इसलिए वह ब्रह्म है। यदि कहो शंकराचार्य ने कहा कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि जो बतलाया गया है वे सत्य है, कौन वो जो ब्रह्म है निर्विशेष ब्रह्म, इनका स्वरूप लक्षण है सत्य ज्ञान इत्यादि। किंतु शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, दोनों चीजें समरूप में सत्य है। ब्रह्म समस्त सद्गुणों के अप्राकृत सद्गुणों के भंडार हैं और दूसरी तरफ में वो अप्राकृत प्राकृत से अतीत है, बस इसीलिए निर्गुण और सगुण ये शब्द है। यथार्थ में सगुण और निर्गुण दोनों एक ही चीज है, इसलिए व्यास जी ने कहा जिसे जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय अर्थात करण आपादान और अधिकरण कारक जिसमें लगे हुए हैं वही ब्रह्म है। इसके द्वारा बताया कि ब्रह्म शक्तिमान है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप है और उससे सत्य स्वरूप ब्रह्म के द्वारा जो सत्य संकल्पित जो ये जगत है ये भी कभी छूटा नहीं। इसलिए वेदों में उपनिषदों में शास्त्रों में कहीं भी इस जगत को मिथ्या इत्यादि नहीं बतलाया गया और ब्रह्म को व्यवहारिक और पारमार्थिक ये दो विषय में कभी नहीं बांटा गया। इसलिए ये विषय बहुत गंभीर है, आज इतना ही कहता हूं, फिर इसके बाद की बात धीरे 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 थोड़ा सा बतलाऊंगा तो समझ में आएगी। अब इतना समझो और इसके बाद में हम चलते अब हम बतलाएंगे और अधिक इतना समझ करके ये समझो ये ब्रह्म दो नहीं है, एक व्यवहारिक ब्रह्म और एक परमात्मिक ब्रह्म, ये कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा। ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है जन्म आदि, इसे जन्म स्थिति प्रलय, इसे इस जगत का भी समझ लो, वैकुंठ जगत को भी समझ लो, गोलोक वृंदावन इत्यादि सबकी प्रकट और स्थिति और ये सब उसी से होता है। अब इसी को हम इसे बदलाएंगे। सिद्ध देह में जीव के स्वरूपगत सिद्ध देह में वह कृष्ण का नित्य दास है, इसलिए दासरति के उदय होने पर जीव का यह प्राकृतिक जो परिचय है वो बेकार का, उसका स्वरूपगत विचार जो वो कृष्ण का दास है चैतन्य महाप्रभु इसी को अपने बतला रहे हैं। ना हम विप्रो न च नरपति ना वैश्यो न शूद्र ना हम वर्णी न च गृहपतर्नो वनस्थो वाच तिर्वा किंतु प्रदत्त निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोविर्भर्तु पदकमलयोर्दासदासान् ना हम विप्रो जीव स्वरूपतः नित्य कृष्ण दास है, उसमें भी बहुत सी चीजें हैं। नित्य दास है तो उसका स्वरूप क्या है, उसके गुण क्या है अप्राकृत, जैसे कृष्ण कर्ता भोक्ता ममता इत्यादि सभी हैं, ऐसे जीवों में भी ऐसे ही जीव भी भोक्ता भी है कर्ता भी है, उसका अपना स्वरूप है रूप है, उसके अपने कृष्ण सेवा की का एक अपना सिद्ध स्वरूप है और सिद्ध भाव भी है, उसका अपना एक कृष्ण को कृष्ण की सेवा करने के लिए अपना रसगत भाव भी है, सब कुछ उनमें है। जैसे कृष्ण का सब कुछ है समस्त अंग प्रत्यंग सब कुछ है, ऐसे जीवों का भी सब कुछ है अभिमाया के द्वारा अच्छा भी, इसलिए महाप्रभु जी इसको बतला रहे हैं ना हम विप्रो मैं विप्र नहीं, न च नरपति मैं क्षत्रिय नहीं, वैश्य भी नहीं, शूद्र भी नहीं। इसके द्वारा ये समझ लो कि अंत्यज भी नहीं हूं। इसके अतिरिक्त क्रिश्चियन, ईसाई, बौद्ध, मुसलमान, विश्व की जितने भी जातियां हैं उनमें से मैं कुछ भी नहीं हूं। ना हम वर्णी न चक्रपतर नो वनस्थो वा ज्योतिर्वा, मैं न तो गृहस्थ हूं, न ब्रह्मचारी हूं, न वनस्थ अथवा जति सन्यासी हूं। किंतु प्रोद्दन लिखिल परमा नंद पूर्णामृताभ्ये गोपी भर्तु पदकमलयोर्दासानुदा। प्रोद्दन निखिल परमानंद, निखिल परमानंद, इसको मान लो एक कमल। कमल जब अत्यंत प्रस्फुटित अवस्था में होगा, अत्यंत सुगंध पूर्ण, अत्यंत सुशीतल, अत्यंत स्निग्ध एवं मधुर होगा, और उस अवस्था में आनंद की का परिपूर्ण माने समुद्र के समान उसकी यदि कल्पना करो, ऐसे जो गोपियों के भर्ता कौन है? नंदनंदन श्याम सुंदर गोपीर भर पदकमलयो दास दासानुदा। यहां पर गोपी भर्ता को न कह करके केवल कृष्ण कह देते तो क्या हर्ज था? हर्ज यह था कि गोपियों के साथ में संबंध नहीं होने से वो सर्वमान्य नहीं होता और गौड़ीय वैष्णव का वो विचार में नहीं आते, इसलिए इसको कहा कि गोपीर भर्तो गोपियों के भर्तो, अर्थात गोपियों के पल्लभ जो कृष्ण है भर्त। पदकमलयो दास दासानुदास, इसका सीधा तात्पर्य जो दास दासानुदास माने गोपी दास, गोपियों का दास, श्रीमती राधिका का दास, ये हमारा शुद्ध आत्मा का परिचय है। विप्रखत्र वैश्य शूद्र कहु नहीं हमी, गृही ब्रह्मचारी बान प्रस्त जति स्वामी, परंतु परमानंद पूर्णा पूर्णामृतावास श्री राधा बल्लभ दास दासेर अनुदास। इस प्रकार से हमारा जीव का स्वरूप है। इसके बाद में कह रहे हैं जिस समय ये षष्ठ दशा आएगी, सिद्ध देह की प्राप्ति होगी और साथ साथ में ये भाव की उपस्थिति हृदय में उदित होगा भाव, तो वो क्या करेगा? उसकी दशा का वर्णन कर रहे हैं, जो उस समय वो क्या करता है, कैसे भजन करता है। ऐसे जो रागानुगात भजन भजनकारी हैं या रूपांग हैं वो ठीक इसी प्रकार से साधन भजन करें। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सना कार्या ब्रजलोकानुसार। सेवा अब तो बतलाया, पहले तो इसमें स्वरूप बतलाया गोपीर भर्तु पदकमलयोर दास दासानुदास, इसमें जीव का स्वरूप बतलाया और इसमें बतला रहे हैं वो उस स्वरूप के द्वारा कैसी सेवा करेगा। सेवा साधक रूपेण, साधक रूप से और सिद्ध रूप से, कृष्ण ने चात्र ही तद्भाव लिप्सना, जिसको भाई गोपीर भर्तु पदकमलयोर दास दासानुदास का जो भाव है उसके प्रति जिसको लोभ उत्पन्न हो गया है वो भाव लिप्सना कार्या वो कैसी सेवा करेगा, कैसा साधन करेगा, उसके लिए बतला रहे हैं ब्रज लोकानुसारतः। ब्रज के जो लोक हैं उसके अनुसार, ब्रज के लोक कौन हैं? यथार्थ में ब्रज के शुद्ध लोग कृष्ण के परिकर ब्रजवासी नंद बाबा, यशोदा मैया, दाम से दाम वसुदान इत्यादि सखा लोग गोपियां सब और जितने हैं वो सब इनके परिकर हैं। और परिकर में से भी जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि ये भी उन्हीं के अनुगत हैं। ये लोग जो ब्रज के लोग हैं उनके अनुसार में साधक रूप से और सिद्ध रूप से सेवा। साधक रूप से कैसे सेवा? जैसे रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि षड गोस्वामी लोग साधक रूप से सेवा करते हैं। कैसे? वो संख्या पूर्वक इत्यादि, संख्या पूर्वक नाम गान नतिवी कालावसान, आलस्य प्रमाद छोड़कर विषयों से विरक्त होकर दीनहीन अकिंचन होकर वैष्णव के अनुगत्य में वृंदावन में ब्रज में माने 84 पुरुष में जहां पर उनकी लीला स्थली है वहां पर रहकर वैष्णव के अनुगत्य में नित्य काल जीवा से भगवान नाम कौन इष्ट देव संबंधी अपना और उनके लीला कथाओं का मन के द्वारा चिंतन करते हुए जो भजन करते हैं ये भजन का सार। अब वैसे ही साधक रूप में करे जैसे रूप सनातन ने भजन किया, रघुनाथ दास गोस्वामी ने भजन किया था, इसके बाद में जीव गोस्वामी इत्यादि, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि, ऐसे साधक रूप में, सिद्ध रूप में रूप गोस्वामी, रूपमंजरी के रूप में रघुनाथ दास गोस्वामी, रतिमंजरी के रूप में ऊपर शरीर में रूप और रघुनाथ रहते हुए भी भीतर से लीला चिंतन इत्यादि के द्वारा सिद्ध शरीर से उनकी सेवा कर रहे, उस प्रकार से सेवा। वो क्या? तांबुलार्पण था आदमर्दन पयोदान अभिषार पादाब्जोस्तव बिना वरदर्शन, आपके चरण की सेवा, राधिका जी के चरण की सेवा के अतिरिक्त और कुछ मैं नहीं चाहती, दासी के अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं चाहती। आशा भरई अमृत सिंधु मयी कथंचित कालो मयात गमिता के सांप्रतम ही पंचेत कृपा मयी दिधास्ते सत्य प्राणई बजेन परोरु वरदानी। आशा भरई प्राण, आशा भरई प्राण सिंधु मयी कथंचित, आशा आशा कैसी है? महासागर के समान लहराती हुई राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा है। आशा भरई अमृत सिंधु, अमृत सिंधुमयी राधा कृष्ण की प्रेममयी जो सेवा है निरंतर अष्टकाली लीला सेवा वो। और कहा मैं क्षुद्र, मैं उसको पाने के लिए उसकी लालसा से जीवन किसी तरह से बड़े दुख से काट रहा हूं। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? राधा कृष्ण की ऐसी प्रेममयी अमृत से भी मधुर, अमृत का सागर जैसा ये है अनंत था। अब मैं क्षुद्र जी, किंतु लालसा मेरी बड़ी है इतनी तक, मैं उसी के लिए अब तक प्राण धारण करके बड़े कष्ट से अभी तक जीवित हो रहा। यदि आपने कृपा नहीं किए हे श्रीमती राधिके तो ब्रजवास से मेरा लाभ, राधा कुंड में रहने से मेरा लाभ क्या? कृष्ण उनसे हमारा लाभ कुछ नहीं। आप यदि कृपा नहीं करेंगी तो तवई वास्मी न जीवामी त्वयाबिना इत्यादि जो भाव है भजन है ये है सिद्ध। तो ये दोनों एक रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के बाहर रूप से जो साधन भजन करते हैं और दूसरा है अंत। प्रेम के दो पहलू हैं, प्रेम रस के, एक है संभोग और दूसरा है। कृष्ण जो है संभोग रस के विषय हैं और भोक्ता है और उस प्रेम रस के आश्रय कौन है? श्रीमती राधिका जी। उस प्रेम रस के के आस्वादन के लिए योग माया ने एक तिरह रस का उद्भावना की है। तिरह रस इसलिए संभोग की पुष्टि के लिए विषय कृष्ण आश्रय श्रीमती राधिका, किंतु आश्रयों के लिए कृष्ण की सेवा की पुष्टि के लिए एक विप्रलंभ की उद्भावना की है। कौन? जो यदि ये नहीं रहेगा तो अब संभोग रस के जो विग्रह हैं से मुक्त विग्रह कृष्ण, वही विप्रलंभ रस की मूर्तिमान विग्रह श्रीमती राधिका, उनके भावों को लेकर के जगत में प्रकटित होकर के ये दोनों की परिपाटी की शिक्षा दे रहे हैं। कौन ये दे रहे हैं? उसी के लिए उन्हीं का उन्होंने जो प्रयाग में रूप गोस्वामी को शिक्षा दी इन दोनों विषयों की, उन्होंने ही भक्ति गोस्वामी सिंधु उज्जवल निर्मल में और विशेष करके विदग्ध माधव और ललित माधव में इसकी विभंजना की, इसको उन्होंने प्रकट किया। उसमें सिद्ध हृदय रूप से दो प्रकार के भाव, मिलन में राधा जी की कैसी सेवा करती हैं और विरह रस में कैसे सेवा करती हैं, दोनों रूपों को लेकर के कैसी उनकी सेवा की परिपाटी है। विशेष करके रूप सनातन में संभोग रस की आश्रय राधिका के रूप में अधिक न लेकर बाहिक रूप में उन्होंने दिखलाया क्या, विप्रलंभ अधिक दिखलाया। महाप्रभु जी ने भी विप्रलंभ ही अधिक दिखाया, क्योंकि जीवों के लिए ये कल्याणकारी है, इसलिए जहां जहां भी गए अष्ट सात्विक विकारों में को दिखलाते हुए जगन्नाथपुरी में वृंदावन में वहां विप्रलंभ रस की उन्होंने, क्योंकि राधिका जी के भाव और कांति को लेकर के आए हैं, इसलिए उनके अनुकरों परिकरों में भी रूप और रघुनाथ गोस्वामी और जितने भी हैं उनमें ये दोनों ही चीज रहेगा। साधक रूप में भी रहेगा जहां तक जरूरत है और सिद्ध रूप में और इसमें चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वरूप दामोदर को रस विचार को विस्तृत करने के लिए प्रचार करने के लिए आदेश दिया। उन्होंने देखा कि रस के दो अंतःपथ और एक है बहिर्पथ, दो पथ हैं उसके। ये रस के बहिर्पथ माने बहिर्पथ की अंतःपथ की शिक्षा उन्होंने स्वरूप दामोदर को दी और उन्होंने रूप गोस्वामी के द्वारा इस रस का विचार विस्तृत विवेचन किया, किंतु उन्होंने ये नहीं उनको बतलाया कि रस की प्रक्रिया कैसे होती है, क्रिया कैसे कैसे उन द्रव्यों को जो चार या पांच प्रकार के द्रव्य हैं भाव विभाव अनुभाव साथ किस रूप में क्रियाशील होकर के वो रस बनेगा, ये प्रक्रिया नहीं बतलाया। रूप गोस्वामी ने रस विचार तो विस्तृत किया किंतु ये नहीं बताया। इसको कौन किया? रघुनाथ जी ने कहां से किया? स्वरूप गोस्वामी के कर्तव्यों से और उनकी शिक्षा से। इसलिए और फिर रूप गोस्वामी ने परिपाटी तो बतलाया नहीं, कैसे विरह में क्या स्थिति और संभोग में क्या स्थिति और संभोग में भी सब समय विरह की स्थिति और विरह में भी मिलन की स्थिति, यह सब बतलाया, किंतु कैसे क्रियावती होगी रघुनाथ दास गोस्वामी ने बतलाया। इन सब को इसमें ले आओ, साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्तना कात्या ब्रजलोकानुसार, इस रूप में लो। यहां पर ब्रजलोकानुसार अर्थ में रूप गोस्वामी सनातन इत्यादि या रघुनाथ दास गोस्वामी उनके अनुसार क्यों कहा ब्रजलोकानुसार अर्थ? बाह्यतः साधन में देखा जाता है गोपियों का वैदिक भक्ति से जरा संबंध कम है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि रूप गोस्वामी ने, भक्ति स्वामी सिंधु ने एकादशी का उपवास और विरह तत्व को जो दिखलाया ये ग्रहणीय नहीं है, इसलिए रूप गोस्वामी ने उसका खंडन करते हुए यहां पर कहा ब्रजलोकानुसारता सब करो, यदि नंद बाबा एकादशी करते हैं, जो यशोदा मैया करती हैं, ब्रजवासी लोग करते हैं, तो तुम क्यों नहीं करेगा, यदि नहीं करता तो ये शास्त्र के दृष्टि के और एक क्या, बहुत से ऐसे संप्रदाय हैं जो विरह को नहीं मानते, विप्रलंब बाबा को नहीं मानते, वो विरह नहीं मानते, नित्य राधा और कृष्ण का मिलन बनाते, इसलिए उनके विचार को खंडन करने के लिए ब्रजलोकानुसार था श्रीमद् भागवत में जैसे ब्रजलोकों का ये विचार किया गया, कैसे कैसे विचार किया, पति सुतांगज धात्री बांधवान अति विलंघते अंत अच्युता, इसमें पति सुतांग इत्यादि का ये वर्णन किया गया, इसलिए कृष्ण गोपियों के प्राण प्रियतम हैं, उनके बल्लभ हैं, उनकी स्वरूप शक्ति की शक्ति और उसके प्रकाश हैं, कभी उनका विरह नहीं है, कभी जो माया के द्वारा अभिमन्यु और गोवर्धन और कौन कौन इत्यादि कुटिला जटिला दुर्मद इत्यादि को अवतरित करा करके माया प्रत्ययित भाव को जगत में प्रकटित करा करके उसमें विरह की एक संभावना को उद्धृत किया, ये असंभव है। कृष्ण जिनके प्राण प्रियतम है, जिनकी स्वरूप शक्ति है राधिका और गोपियां, नित्य उनके प्राण बल्लभ हैं, प्रियतम हैं, उनका कभी भी मृगमत और उसका गंध सूर्य और किरण में जैसे कभी भेद नहीं होगा, तभी ये भेद की संभावना कहां से आ रही है गोपियों में और कृष्ण में विरह की संभावना, इसलिए ये जो माया के द्वारा इस प्रेम की पुष्टि के लिए, संभव की पुष्टि के लिए अभिमन्यु इत्यादि की अवतारणा करा करके बहुत दुर्लभ प्रेम को बनाया है, प्रेम के आस्वादन के लिए, इनके आस्वादन करने के लिए, कृष्ण और गोपियों के आस्वादन के लिए बनाया, इसलिए इन सब के द्वारा ऐसा सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सुना, जो उन भावों का आस्वादन करने वाले उसमें लोभ युक्त हैं, उनको ब्रजलोकानुसारतः रूप सनातन की भांति, गोपियों की भांति, रूप सनातन की भांति उनको आसन पंजा कल पतितानं पावने पावन। अभी कल यूं तो श्रावण मास से ही ब्रज में सर्वत्र झूला होता है, किंतु हम लोगों के विशेष करके ये पांच दिन एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक के मंथ ये मनाया जाता है, तो कल से हम लोग मनाएंगे, यहाँ पर भी झूला साधारण रूप से हम मनाएंगे, और यहाँ से चार बजे साढ़े चार बजे झूले में ठाकुर जी को हम लोग आरोहण कराकर और फिर हम लोग वृंदावन में जाएंगे, और वहां पर पहले रूप सनातन गौड़ीय मठ में उनको झूला पर आरोहण कराकर और फिर वहां से हम लोग जाएंगे गोपीनाथ गौड़ीय मठ में उनको झूला पर चढ़ाकर और कुछ तत्व इत्यादि का अनुशीलन करेंगे, और दूसरे दिन भोर में रूप गोस्वामी का विरह तिथि तिरो भाव, उस दिन हम लोग सवेरे आरती इत्यादि के बाद में थोड़ा सा पाठ कीर्तन करने के बाद में हम लोग करीब करीब 7 बजे के करीब में रूप गोस्वामी के भजन और समाधि कुटी में हम लोग जाएंगे राधा दामोदर मंदिर, और वहां पर सबसे पहले जीव गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तत्पश्चात श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, इसके बाद में रूप गोस्वामी की भजन स्थली, समाधि स्थली इत्यादि का अर्चन पूजन इत्यादि का, और वहाँ पर कुछ हरि कथा कहकर फिर वहाँ से राधा दामोदर मंदिर में हम लोग आएंगे। वहाँ पर राधा दामोदर जी का दर्शन करके और फिर वहाँ से रूप सनातन गौड़ीय मठ में लौटेंगे, और वहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करने के बाद में 10 से लेकर के 12 बजे तक हरि कथा हो। रूप गोस्वामी के विभिन्न वैशिष्ट्य पर हम लोग विचार करेंगे, और इसके पश्चात में भोग राग होगा, और इसके बाद में थोड़ा सा विश्राम करके 4 बजे से हम लोग फिर बैठेंगे उसमें बड़े बड़े वहाँ के अच्छे गौड़ीय वैष्णव समाज के बड़े बड़े विद्वान लोग उसमें आएंगे। वहाँ पर विद्वत सभा होगी, उसमें रूप गोस्वामी के चरित्र के ऊपर में हम लोग कुछ सभी लोगों से सुनेंगे और कुछ सुनाएंगे। इसके बाद में फिर हम लोग वहाँ पर करीब करीब 5 दिन पूर्णिमा तक वहाँ हम रहेंगे, और प्रतिदिन हरि कथा इत्यादि। तो आप लोगों में से कोई कोई जा सकते हैं, जो जा सकते हैं या जा सकती हैं, विशेष करके आप लोग दूसरे दिन में जन रूप गोस्वामी के तिरुभाव के उस समय आप लोग आ सकते हैं या आ सकती हैं। सभी लोग जो जो आएंगे वहीं पर सभी लोग प्रसाद पाएंगे, जो परिक्रमा करना चाहेंगे वो वहाँ की वृंदावन की परिक्रमा भी कर लेंगे, प्रसाद भी पाएंगे, और हरि कथा सुन करके 6 बजे के करीब हम लोग छोड़ देंगे, 6:30 बजे। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर आ, और जाने की इच्छा हो तो और दिन भी जा सकते हैं या वहाँ पर रह सकते हैं, वो आप लोगों के सुविधा और असुविधा पर निर्भर। आज यहीं तक रहे। यहाँ पर भी ब्रह्मचारी लोग आज रात में कल सवेरे ठाकुर जी को सजाएंगे झूला, साधारण रूप में जैसा समझ होता है ब्रह्मचारी लोग सभी लोग, और उधर में वृंदावन में भी झूला अच्छी तरह से सजेंगे।